शांति। कर्मों की गुह्य गति, इस विषय पर संबोधन करने के लिए हमारे मध्य फिर से आदरणीय शीलू दीदी उपस्थित हैं। आप सभी महान आत्माओं से हमारा नम्र निवेदन है, एक हाथ के ताली से आप शीलू बहन जी का भी स्वागत करेंगे। कर्मों की गुह्य गति, इस विषय को लेकर आज अनेक लोगों की आस्था दुविधाजनक है। एक ओर बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वे अनुशासन में चले, अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत सारी बातें सिखाते भी हैं, और दूसरी ओर कह देते हैं आजकल अच्छाई का जमाना कहाँ है, ऐसे को तैसे। तो बहुत सारे विषयों पर दुविधाजनक आस्था होने के कारण श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा नहीं मिल पाती है। जब जीवन में अनायास ही कुछ प्राप्त हो जाता है तो उन्हें लेकर कोई प्रश्न नहीं उठता है मनुष्य के मन में। जब कुछ अनायास ही कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, तो मन में कई सारे प्रश्न उठ जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरा ही जीवन ऐसा क्यों है, तनाव में आ जाते हैं, भय में आ जाते हैं। तो ऐसे में राजयोग के द्वारा कैसे श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म किसे कहा जाता है, जो स्वयं परमात्मा ने कर्मों की गुह्य गति समझाई है, आज हम सुनेंगे आदरणीय शीलू दीदी से। कहा जाता है जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, जैसा कर्म हम करते जाएंगे उसी अनुसार हमारा जीवन बनता जाएगा। इसलिए कर्मों पर हमें बिल्कुल बहुत ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है, इन सारे विषयों पर आज हम इस सत्र में आदरणीय शीलू दीदी के द्वारा सुनेंगे। अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय शीलू दीदी से कर्मों की गुह्य गति, इस विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय शीलू बहन जी।
ओम शांति। राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से संबंध, तो राजयोग में जितना आत्मा का महत्व है अथवा योगी का महत्व है, साधक का महत्व है, उतना ही परमात्मा जो योगेश्वर है उसका भी महत्व है। और फिर आत्मा कैसे इस संसार में चक्र लगाती है उसका भी महत्व है। और ये तीन मूल विषय आपके कल और आज हो चुके हैं। अब ये चौथा विषय है कि आत्मा इस संसार में क्यों आई है, जबकि आत्मा का घर परमधाम है, मुक्ति धाम है, तो इस दुनिया में हम क्यों आए हैं। आत्मा साधक है, ये शरीर उसका साधन है, जिस साधन के द्वारा आत्मा कर्म करती है। लेकिन क्यों आए हैं इसके पीछे कई राज हैं। ये संसार एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम आत्माएं एक्टर्स हैं। हर आत्मा में कर्म करने का एक बहुत सुंदर पार्ट है, उसके अंदर एक कला है, उस कला को, उस पार्ट को प्रदर्शित करने लिए, व्यक्त करने लिए आत्मा इस संसार में आती है। और जब आती है तो एक लक्ष्य मिलता है कि आत्मा के अंदर जो मूल गुण हैं, वे गुण अपने कर्मों द्वारा व्यक्त करें। आत्मा ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप भी है, और वो गुण आत्मा कर्म में व्यक्त करे। और जितना जितना कर्म में ये व्यक्त करते जाएंगे उतना उतना हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी। किसको सुख देंगे तो हमारा अपना सुख कम नहीं होगा, किसको खुशी देंगे हमारी खुशी कम नहीं होगी, वो तो बढ़ती जाएगी। ज्ञान देंगे तो हमारा ज्ञान कम नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। ये ज्ञान धन, शांति धन, प्रेम धन, सुख धन, शक्ति धन, ये सब धन है, आत्मा का धन है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि आप जो दूसरों को देंगे वो आपको रिटर्न होकर मिलेगा। ये है कर्मों की गहन गति, जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप किसी को दुख देंगे तो दुख ही रिटर्न में मिलेगा, सुख देंगे तो सुख रिटर्न में मिलेगा। तो आप अपने लिए क्या चाहते हो वही आप दूसरों को दें, बस यही कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है। तो कर्म क्या चीज है, अगर हम ये प्रश्न जब पूछते हैं तो कर्म की व्याख्या क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, तो जैसे युज शब्द से योग निकला, युज योग जिसका अर्थ है जोड़ना, तो कर्म शब्द भी संस्कृत का शब्द है, जिसका अगर शाब्दिक अर्थ ले तो कोई लंबा चौड़ा नहीं है। कर्म माना कोई भी प्रकार की क्रिया। हम हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो क्रिया देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, आत्मा शरीर के द्वारा ये क्रिया करती है, ये सब कर्म के अंतर्गत आता है। जो कुछ भी हम अपने हाथों से, पैरों से, अपनी इंद्रियों से करते हैं वो क्रिया कहलाता है। और वो क्रिया कहो, कार्य कहो, कृति कहो, ये कर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन जब इस कर्म शब्द का व्यापक, बेहद बड़ा रूप, बड़ा इसका परिचय लेते हैं, तो कर्म केवल क्रिया ही नहीं है लेकिन साथ साथ उसकी प्रतिक्रिया भी है, ये भी कर्म शब्द के अंतर्गत आता है। जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, इसीलिए अगर किसी में प्रतिक्रिया ठीक नहीं है तो हम यही कहेंगे क्या करें, मेरे कर्म ऐसे हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया ये दोनों कर्म के अंतर्गत आते हैं। अब अगर साधारण रूप से देखते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया की जहां बात आती है, तो न्यूटन जो विज्ञान के बहुत बड़े साइंटिस्ट होके गए हैं, फादर ऑफ साइंस न्यूटन को मानते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा तथ्य दिया कि हर क्रिया की समान और बराबर प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की समान और बराबर प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक मिसाल दिया जाता है कि जैसे पांच गेंद अगर इकट्ठे हैं एक ही डंडे पर और आप एक गेंद पकड़ करके अपने तरफ लेते हो और जितनी शक्ति से आप उस गेंद को और गेंदों पर वापस फेंकते हो, उतनी ही शक्ति से जो अंतिम गेंद है वो बाहर जाकर वापस उसी शक्ति से आता है। ये है क्रिया और प्रतिक्रिया, बराबर भी है और समान भी है। लेकिन कर्म की गति समझना इतना सहज नहीं है कि हर बार वो समान भी हो और बराबर भी हो, ये नहीं है। इसीलिए कई कहते हैं कि अगर ये नहीं है तो क्या है कर्म की गति। इस इसीलिए कई प्रकार के मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि मैं तो इसके साथ कितनी भलाई करता हूँ, लेकिन वो मेरे से बुराई क्यों करता है? मैं तो इसको सुख देता हूँ, वो मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है? मैं इतना ईमानदार हूँ इसके साथ, ये मेरे साथ इतनी बेईमानी क्यों करता है? मेरा इन पर कितना विश्वास है, लेकिन ये मेरे प्रति वो विश्वासघात करता है। तो ये मैं ये करता हूँ, ये ऐसे क्यों करता है? क्योंकि कर्म की गति में यही है कि क्रिया और प्रतिक्रिया समान होनी चाहिए, लेकिन जब हम परिणाम कुछ अलग देखते हैं तब मन में प्रश्न उठते हैं, ऐसा क्यों? वास्तव में कर्म सिद्धांत के अंदर ये सारी बातें भी आती है कि जरूरी नहीं है कि हमने जो दिया वो ही उसी रूप में ही वापस आएगा, क्योंकि कर्म और फल के बीच में बहुत बड़ा अंतराल भी है। अब उस अंतराल को भी समझना होगा। वहां तो तुरंत प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कर्म और फल के बीच में तुरंत फल मिले ये जरूरी नहीं है, बहुत समय के बाद भी फल मिलता है, और उतना ही मिले ये भी जरूरी नहीं है, उस रूप में ही मिले उतना भी ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, तब उनके मन में प्रश्न उठता है कि क्या भगवान की दुनिया में कुछ अन्याय दिखाई देता है? फिर दूसरी ओर कहावत भी है कि ईश्वर की दुनिया में देर है लेकिन क्या नहीं है, अंधेर नहीं है। तो अंधेर नहीं है, देर भले है, क्योंकि हर बीज कोई उसी समय फल देता है ऐसी बात नहीं है, अपना अपना उनका समय होता है। तो इसी को समझना माना कर्म सिद्धांत को समझना, क्योंकि कर्म अर्थात कारण और परिणाम का सिद्धांत, परिणाम उतना ही वैसा ही उसी रूप में उसी समय ये नहीं होता है। कारण है तो परिणाम जरूर होगा, ये हो नहीं सकता कि कारण है और परिणाम नहीं है, ये हो नहीं सकता कि परिणाम है पर कारण नहीं है, कारण जरूर होगा। बिना कारण के परिणाम नहीं, बिना परिणाम के कारण नहीं, और इसी से जुड़ा हुआ है भूत वर्तमान और भविष्य। आज जो मेरा वर्तमान है ये ऐसे ही नहीं बना है, कितने वर्षों की तपस्या है, इतना त्याग है, इतनी सेवा की भावना है, क्या नहीं किया होगा जीवन में, और उसी का परिणाम है जो आज आपके सामने हम दिल से ये बातें कह सकते हैं। जरूर, इसीलिए कारण और परिणाम के सिद्धांत को समझना माना कर्म को समझना। पर ये जरूर है कि हम दूसरों को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, और इसलिए हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। ऐसे नहीं कि हम देंगे कुछ और मिलेगा कुछ और, या हमारे पास जो आया वो हमने नहीं दिया ऐसे ही दूसरे से आया, नहीं। इसलिए इसकी गहराई हमें समझनी होगी, इसको कहेंगे कर्म सिद्धांत को समझना। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये तो हो नहीं सकता कि आप आम का बीज डालें और आपको अनार का पेड़ मिले, या अनार का बीज डालें और आम का पेड़ मिले, ये तो हो नहीं सकता। आम ही मिलेगा, अगर आम का बीज डाला है अनार ही मिलेगा, अगर अनार का बीज डाला है तो। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमने आम का बीज पहले से डाला है, और हो सकता है उसके ही पास में हम अनार का भी बीज बो दें और थोड़ी देर में हमें पता चलता, अरे ये तो आम का, आम के पत्ते निकल रहे, मैंने तो अनार का बीज बोया था, ये आम कैसे आ गया। लेकिन हम भूल गए हैं कि आम भी बोया था। इसीलिए अनार का अनार के पत्ते नहीं आएंगे क्योंकि पहले आम का बीज बोया है। अनार के आएंगे लेकिन अभी नहीं, पहले आम के बीज से पत्ते निकलेंगे। तो इसीलिए कर्म सिद्धांत में जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो अटल सत्य है। इसीलिए हम जैसा चाहते हैं अपने लिए वो वैसा ही हमें दूसरों को देना है। अगर दूसरे वैसा ही नहीं देते तो ये नहीं है कि मैंने ये दिया और इसने ये क्यों दिया। अवश्य मैंने भी कभी ऐसे दिया होगा जो अभी मुझे मिल रहा है, क्योंकि अभी जो किया उसका फल अभी तुरंत नहीं मिलेगा, ये पहले का किया हुआ है। इसलिए जो रिटर्न मिलता है तो मेरा ही अपना कर्म का फल। हम इसमें दूसरे को कभी भी दोष नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जब दोष नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा सा धीरज रखना होगा। इसलिए कहा जाता है धीरज का फल मीठा है। देर पके सो मीठा होए। पेड़ पर अगर हम फल को पकाते हैं तो कितना मीठा होकर के निकलता है। कच्चा फल भी नहीं तोड़ना है और दवाइयों के साथ रख कर के भी नहीं पकाना है, वो टेस्ट नहीं आएगी। इसलिए धीरज का फल मीठा है। तो जब हम ये बात भी समझते हैं तो कई लोग इस धीरज को समझ नहीं सकते हैं, अधीर्य बन जाते हैं, मैंने ये किया तो ये क्यों मिला। तो अधीर्यपना हमें पहले त्यागना होगा और एक धीरज रखना होगा कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए कर्म सिद्धांत से हमें शिक्षा एक तो यही मिलती है कि आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप स्वयं के लिए दूसरों से चाहते हो। अब इस सिद्धांत को सामने रख करके हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए वो भी हमें समझना होगा। और हमारे कर्म ही कारण हैं जो सही समय पर कर्म फल के रूप में सामने आते हैं। ये कर्म का शाश्वत एवं अटल सिद्धांत, इसको हम कभी न भूलें, क्योंकि ये परमात्मा की दुनिया है। परमात्मा दुख हरता सुख करता है, न्यायकारी है, दाता है, रहम दिल है, कृपालु है। कभी भी ये नहीं होगा कि हमारे साथ अन्याय हो। इसलिए किसी को भी हम दोषी कभी न बनाएं। इसीलिए आपको बताया कि आप किसी के ऊपर अंगुली उठाते हो तो एक अंगुली तो उसके ऊपर उठाते हो दोषी समझ करके, लेकिन तीन अंगुली अपने तरफ भी लाते हो कि अगर चलो वो एक गुना दोषी है पर तीन गुना तो मैं स्वयं हूँ। इसलिए वो पहले बदले ये कभी नहीं सोचना है, पर मैं पहले बदलूं क्योंकि तीन गुना दोषी तो मैं हूं, तो मुझे बदलना है। अगर ये बुद्धि में लक्ष्य होगा, जिसको हम इस विश्वविद्यालय में कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो जग बदलेगा, पहले मुझे बदलना है। ये कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है। मुझे बदलना है। तो इसीलिए जब इस सिद्धांत को हम समझने लगते हैं तो और गहराई में जाते हैं कि एक बीज का एक फल भी नहीं होता है। कई बार एक फल होता हो सकता है, लेकिन एक बीज के कितने फल निकलते हैं। एक आम का बीज हम डालते हैं और कितने फल आम के हमें मिलते हैं। बीज तो एक ही डाला। नारियल का बीज डालते हैं, कितने नारियल हमें मिलते हैं। चलो आम का फल तो सीजन में मिलेगा, पर नारियल का फल तो सारा साल मिलता रहता है। लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार फल मिलना शुरू हुआ तो देता रहेगा, पर जब तक फल उसका निकले तब तक समय तो देना पड़ेगा। तो कोई फल सीजन में देते हैं, कोई सारा साल देते हैं, कोई एक साल छोड़कर दूसरे साल देते हैं, हर साल नहीं भी देते हैं। तो दुनिया में हम जब बीज और फल की बात करते हैं, उसमें ऐसे भी होता है कि बीज तो किसी और ने बोया और फल हम खा रहे हैं। एक आम के पेड़ के लिए कहा जाता था पहले जमाने में कि दादा बोए और पोता खाए। दादा अपने जमाने में बीज बोता था आम का, पर इतना जल्दी फल नहीं निकलता था। पोता जब बड़ा होता था तब उसको मिलता था, और बोया था दादा ने। तो एक बूढ़ा व्यक्ति आम का बीज बो रहा था, उससे किसी ने पूछा, अरे आप तो बूढ़े हो गए, अभी आम का बीज बोते हो, आप कब फल खाएंगे। तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, इसकी क्या बड़ी बात है, मेरे दादाजी ने जो बोया वो मैं खा रहा हूँ, और मैं जो बोऊंगा मेरे पोते खाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि उनका बोया हुआ मैं खा रहा हूँ। लेकिन ये तो चलो वो दुनियावी बीज और फल की बात है, लेकिन कर्म रूपी बीज और उसका फल दादा और पोते से नहीं लगता है। ये तो आपको ही करना होगा, आपको ही पाना होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले में, चार जन्म के बाद, आठ जन्म के बाद पाना तो आपको ही है। एक छोटा सा चुटकुला सुनाते हैं इस पर कि एक बार किसी रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था कि आप आइए, आपका स्वागत है, और जितना आप खाना चाहें आप खूब खाइए, और आपका बिल आपके पोतरे भरेंगे, आपको भरना नहीं होगा, आपके पोतरे भरेंगे। तो एक व्यक्ति गया और खूब डट के खाया, और उसके बाद बिल आ गया उसके टेबल पर। उसने कहा, ये क्या, मैंने खाया, आपका बाहर लिखा हुआ है कि आपके पोते भरेंगे, फिर बिल क्यों दिया। तो कहा, भाई साहब, ये तो आपके दादाजी का बिल है। क्योंकि ये भूल गया कि मेरे पोते भरेंगे मेरा, तो मैं भी तो किसका पोता हूँ, कि खाली मेरे ही पोते हैं क्या। तो मैं भी किसका पोता हूँ, तो मेरे दादाजी का बिल मुझे भरना होगा। पर ये तो फिर भी सांसारिक बात है, बिल तो उसको ही भरना है। ये तो एक आकर्षण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कर्मों के हिसाब किताब में ये कभी नहीं कहा जाएगा, आप करो और फल कोई दूसरा पाए, आपको ही पाना होगा। इसीलिए तीन प्रकार के सिद्धांत है कर्म के अंतर्गत। एक है जैसा बीज वैसा फल, उसी समय बोया उसी समय पाया। आप मन में कुछ ऐसे किसके प्रति बुरा संकल्प करते हैं, ये भी एक बीज डाला, संकल्प का बीज, विचार किया, किसके लिए बुरा सोचा, उसी वक्त आपका मन मैला हो जाएगा, ये तुरंत फल है उसका। आपका मन खाएगा, अरे मैंने उसके लिए ऐसे क्यों सोच लिया, मुझे नहीं सोचना है। अब फल मिल गया, अंदर में बुरा लगा, वो खत्म हो गया, सोचा, कर्म अंदर संकल्प किया और उसका रिटर्न उसी वक्त पाया। किस रूप में, अंदर मन में घृणा आई, मुझे ऐसे नहीं कर सोचना चाहिए। जैसे आप अंगुली उठाते हो, तो हवा में लकीर खींचते हो, लकीर तो खींच गई लेकिन आपको पता भी नहीं चला क्योंकि हवा तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कर्म का फल तो हुआ ना, लकीर खींची पर एक सेकंड में मिट भी गई। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि संकल्प से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुख तक भी आ जाता है, क्योंकि जो मन में सोचते हैं वो कई बार मुख पर तो आता है जरूर। तो अंदर मन में सोचा कि ये तो मर जाए तो अच्छा है मान लो, फिर मन में आया नहीं 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 मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर बार बार आता रहता है, तो एक दिन तो मुख से निकल ही जाएगा, चल मर जा। अब मर जा कह दिया तो उसको तो कितना दुख होगा, कितना दुख होगा, उसके दिल को दुखाया हमने, और वो कभी भूलेगा नहीं कि इसने मुझे कहा था मर जा। फिर आप कितना भी कहो नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा भाव ये नहीं था, हाँ मुझे माफ कर दो अगर ये मुख से निकल गया, हाँ मेरी अंदर में कोई ऐसी मंशा नहीं है, मुझे माफ कर दो, चलो माफ हो गया, लेकिन समय श्वास शक्ति थोड़ी व्यर्थ तो गई ना ये बातचीत करने में या अपने आप को समझाने में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, चलो थोड़ा समय लगा। तो ये ऐसे हुआ जैसे हमने हवा के बजाय मैंने पानी पर लकीर खींची, तो कुछ देर के लिए वो लकीर रही फिर मिट गई, हवा में तो पता ही नहीं चला, मन में सोचा वो फिर उसको समझ लिया भूल गए, तो आपको ही पता तो और तो किसको पता ही नहीं, पर पानी पर खींचा तो वो तो फिर कुछ देर दिखाई देगा। परंतु अगर आपने एक नोकीली चीज लेकर पत्थर पर लकीर खींची तो वो तो कितने समय तक लकीर चलती रहेगी, जो आप जब भी सालों साल वो देखेंगे वो लकीर तो खींची हुई है, कई अपने नाम लिखते हैं पत्थरों पर और हर साल देखने जाते हैं कि मेरा नाम अभी तक है या नहीं उस पत्थर पर, तो कितने सालों तक वो नाम रहता है। तो इसको कहते हैं पत्थर पर लकीर, यानी इतना गहरा दाग लगा जो वो दाग अमिट हो जाता है और जन्म जन्म तक चल सकता है। कैसे, समझो गुस्से में आकर के आपने मर जा या मार डालूंगा कहा और सचमुच बंदूक लेकर के उसको मार डाला, अब क्या आप बचेंगे क्या? पर मान लो आप बच गए, आपको आप पकड़े नहीं गए, चलो मान सकते हैं, लेकिन वो कर्म आपका पीछा करेगा, अनेक जन्मों तक पीछा करेगा जब तक वो हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा, ये कर्म की गति है। और हर उस जन्म में आपको अंदर ही अंदर मन खाता रहेगा कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको पता नहीं है पर वो कर्म पीछा कर रहे हैं। कर्म तो एक किया, बीज तो एक डाला, लेकिन कितना फल उसका मिलता रहा। इसीलिए बीज एक और फल अनेक, ये कर्म सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत है। और तीसरा है कि बीज बोने और फल पाने का समय अलग अलग है, जैसा बीज वैसा फल पर अलग समय पर, कोई तो उसी समय हुआ पर कोई तो कर्म में आ गया तो वो तो अलग समय पर होगा ही। इसीलिए ईश्वर के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। अब जब ये बात हम समझते हैं तो हमें बीज और फल के पहले सिद्धांत को समझे हम, कि अगर हम आम बोएंगे तो आम मिलेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल ही मिलेगा, आम हम आम की अपेक्षा कैसे करेंगे? अगर हम दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे सुख मिलेगा, ये कभी ना हम भूलें। पर मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं तो किसको दुख दे नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सुख दे रहा हूँ, पर वो मुझे दुख क्यों दे रहा है? तो अवश्य किसी जन्म के आपके कर्म का फल है जो आपको वो दुख दे रहा है, वो रिटर्न मिल रहा है आपके ही कर्म का फल। तो ये नहीं कहें कि ये क्यों दे रहा है, मैं तो उनको सुख दे रहा हूँ, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि आप उसका दुख लेते क्यों हो, अगर आप दुख नहीं दे रहे हो तो न्यारे हो जाओ, उसका कर्म है, जो करेगा वो पाएगा। आप दुख नहीं दे रहे हो तो आपका मन अगर साफ है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो दुख लो ही नहीं, आपके हाथ में है दुख लेना या न लेना। और तीसरी बात है कि फिर भी वो बहुत कुछ दुख दे रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, ये उसका अपना कर्म का हिसाब किताब है। कई लोगों के अंदर में बहुत शंकाएं होती है भाई, कई प्रकार के भ्रम होते हैं, वहम होते हैं, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, तो ये उनकी अपनी आदत है, शक करना, वहम करना, शंकाएं करते रहना, अंदर ही अंदर नेगेटिव सोचते रहना, ये उसका अपना हिसाब किताब है। तो ऐसी आत्मा पर तो आपको दया करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ये क्यों ऐसे मेरे लिए कहता है जब मेरे अंदर ऐसे नहीं है, ये उसका अपना कर्म का हिसाब किताब है, वो खुद ही दुखी हो रहा है अपने कर्म से, इसलिए वो दुखी खुद हो रहा है, कर्म उसका है। और आपका दिल साफ है तो कहा जाता हाँ, अगर अंदर आपका मन साफ है तो आपके अंदर गंगा बहती, आप क्यों चिंता करते हो अगर आपका दिल साफ है तो, है ना, क्या कहावत है उसके लिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन चंगा है, अच्छा है, आपके मन में कोई किसके प्रति बुराई नहीं है, तो कठौती में ना गंगा ही बह रही है, यही समझो आप, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मुझे क्या करना है वही सोचना है, वो क्या कर रहा है ये उसका कर्म, जो करेगा वो पाएगा। पर ये कहना भी नहीं है किसको कि तुम कर रहे हो तुम ही पाओगे, ये तो हम जानते हैं, उसके प्रति तो दया भावना रहेगी, उसके प्रति रहम आएगा कि ये बेचारा नहीं जानता ये क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए हम जो देंगे वो हमें मिलेगा, पर जरूरी नहीं है कि अभी मिलेगा, कितने समय के बाद मिलेगा वो हर एक कर्म रूपी बीज का अलग अलग हिसाब किताब है। कई बार हमें लगता है मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, दूसरा जब झूठ बोलता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं इतना सच्चा हूँ तो वो भी तो सच्चा रहे मेरे साथ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ पर गुस्सा आना ये भी तो कौन सा अच्छी बात है। झूठ वो बोल रहा है मान लो, पर गुस्सा तो हमको आ रहा है, तो जैसे झूठ बोलना पाप है वैसे गुस्सा करना भी तो पाप है ना, कि वो पुण्य है वो भी तो पाप है, इसीलिए झूठ भी पाप है, परंतु उनसे बड़ा पाप तो गुस्सा करना हो गया। तो हम दूसरे के पाप को देखते हैं पर अपने पाप को तो देखते नहीं, क्या पता हमारे क्रोध के कारण वो झूठ बोल रहा हो। तो कई बार छोटे बच्चे होते हैं माँ बाप के डर के कारण झूठ बोल देते हैं, क्योंकि डर लगता है मम्मी मारेगी डैडी मारेंगे, तो मारेंगे ये डर के मारे झूठ बोल देते हैं। लेकिन अगर माँ बाप प्यार से पूछते हैं तो बच्चे तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो बड़े सच्चे होते हैं। तो इसीलिए हम किसी पर ऐसे ही दोष धर दें ये झूठ बोल रहा और हम गुस्सा कर रहे हैं, उसके झूठ का कारण मैं हूँ क्योंकि मैंने क्रोध किया, तो उसका पाप नहीं बनेगा मेरा पाप बन जाएगा, ये कर्म की गति है। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा झूठ तो हम ये बोल रहे हैं मैं वास्तव में आत्मा हूँ और खुद को शरीर समझना, ये कितना बड़ा झूठ है। तो कोई कहे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ पर सारा दिन मैं अभिमान के वश कहता है, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। तो कैसे नहीं झूठ बोलता है, भले कितना भी कहे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ पर अभिमान से वो कहता है, ये भी तो बड़ा पाप बन जाता है, क्योंकि अभिमान भी पाप का ही एक स्वरूप है। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि हमको क्या करना है। तो तीसरा सिद्धांत बीज बोने और फल पाने का समय अलग अलग है, इसलिए सदा याद रखें हमने जो किया है एक न एक दिन हमको अवश्य मिलेगा, हम उसे बच नहीं सकते हैं। इस न्यायालय में तो बच भी जाएं, लेकिन ईश्वर के न्यायालय में, वो सुप्रीम जस्टिस के न्यायालय में हम नहीं बच सकते हैं। तो इसीलिए परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं कि अपने कर्म रूपी बीज को अच्छी तरह से पहचान करके उसको बो। अब और इसके आगे बढ़े कि बीज बोने और फल पाने तक की एक लंबी यात्रा है। बीज बोने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि धरनी कैसे है। अगर धरनी सही नहीं है, पथरीली धरनी है, तो उस पथरीली धरनी में हम बीज डालेंगे तो निष्फल ही जाएगा ना, कहाँ वो बीज का रोपण होने से कोई फल निकलेगा, वो निष्फल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है दान करना ये बहुत ऊंची चीज है, दान एक बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन दान किसको करें जो पात्र हो। अगर धरनी जो जिसको हम दान कर रहे हैं या बीज डाल रहे हैं, अगर वो पात्र ही नहीं है तो हमारा दान तो निष्फल जाएगा। इसीलिए दान भी कहते हैं सोच समझ करके करना है, जो योग्य पात्र हो, कुपात्र को दान नहीं करना है। अब ये भी तो ज्ञान चाहिए कि कुपात्र कौन है, सुपात्र कौन है। इसीलिए कर्मों की गति बड़ी गहरी है, और चलो अगर सुपात्र भी हो, हमने दान किया, बहुत अच्छा कर्म किया, तो बीज डाला क्योंकि वो योग्य है, सुपात्र है, उसको उसमें बीज डाला, फिर उसको सींचना भी होता है। आज कई हमारे सामने आते हैं, भाई हमको मंदिर बनवाना है, वो मंदिर बनवाना है इसीलिए इतना दान चाहिए। चलो आपने सोचा अच्छा काम है, मंदिर बनाने का होगा, चलो दान हम कर देते हैं। लेकिन इतना सबका दान ले लिया पर मंदिर वंदिर तो कुछ बना नहीं, सूची जरूर तैयार हो गई, इसने इतना दिया, और मंदिर तो लापता, वो तो पता ही नहीं, गायब भी हो गया सब कुछ, तो दान तो निष्फल गया ना, अभी किस खाते में गया कौन जाने। इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम दान भी करें तो किसको करें, कि कौन योग्य होगा। चलो दान करने के बाद फिर हमें ये भी अभिमान ना आए कि मैंने किया। हाँ जरूर उसको सींचना है, बीज डालने के बाद सींचना भी पड़ता है, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो भी वो निष्फल चला जाएगा, सींचना भी पड़ता है, जरूर देखना होगा कि भाई वो मंदिर बना या नहीं बना, उसमें हमारा भी कुछ रोल है जरूर, हमारी भी जिम्मेदारी है जरूर, तो उसको सींचना भी पड़ता है, फिर नए पत्तों की रक्षा भी करनी पड़ती है, फिर फल पक जब पकने देना भी पड़ता है, धीरज भी रखना होता है, ये सब बातें भी जरूरी है। और फल पकने के बाद खाओ और खिलाओ, आप भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। मान लो जैसे मेरा ये वर्तमान स्वरूप है, ये एक फल के रूप में भी है और बीज के रूप में भी है ना, कहते ना आम के आम गुठली के भी दाम। ये क्यों कहते, आम तो फल है पर उसमें जो गुठली है उसका भी अपना महत्व है। तो जैसे ये मेरा वर्तमान स्वरूप है, ये पूर्व के कर्म का परिणाम है, ये ऐसे ही नहीं है, परंतु ये साथ साथ एक बीज का रूप भी है वर्तमान, जो फिर मेरा भविष्य निर्धारित करेगा। अभी तो मेरा बहुत ऊंचा स्थान है, अब ताली न बजाएं, अभी तो मेरा बहुत ऊंचा स्थान है, पर थोड़ी सी मैंने गफलत की तो आगे थोड़ी ये फल मिलेगा, थोड़ी सी गफलत भी कितना नुकसान कर सकती है। तो हर कदम कदम पर सोच समझ कर हमको चलना पड़ेगा। तो वर्तमान हमने पूर्व के कर्म का पाया है, पर वर्तमान में भी हमें समझ कर करना होगा अगर भविष्य में हम चाहते हैं तो। तो फल अभी जो मेरा वर्तमान स्वरूप है, मानो मैं तंदुरुस्त हूँ, इस उम्र में भी इतनी आयु बीत गई लेकिन कोई बीमारी नहीं है, सब बहुत अच्छा है। जरूर मैंने अपने मन को शांति में रखा है, एक्सरसाइज की है, ठीक खाना खाया है, ऐसे वैसे नहीं खाया है, सब अच्छा है। परंतु अगर मैं नहीं हूँ, जरूर पूर्व में मैंने कई गलतियां की अपने साथ, पर अभी भी अगर ठीक हूँ पर अभी भी गलती करूंगी तो आगे तो नुकसान होगा ही। इसलिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये भूत वर्तमान भविष्य, तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। केवल वर्तमान को ही हम नहीं देखें, उसका पास्ट कैसा था। कई बार ऐसे होता है पास्ट तो बहुत बुरा था लेकिन प्रेजेंट अच्छा है क्योंकि बदल गया। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हर संत का एक भूतकाल भी होता है। जरूरी नहीं हो कि वो बचपन से ही संत हो। वाल्मीकि के लिए कहते हैं कि वो तो एक डाकू था, लेकिन कैसे डाकू संत बन गया, उनकी आंखें खुल गई। तो इसीलिए इंग्लिश में बहुत सुंदर कहावत है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट। उसका पास्ट कैसा होगा, हाँ, भूतकाल क्या होगा पता नहीं, लेकिन कोई उसको ऐसा अच्छा संग मिला जिस संग के आधार पर वो बदल गया और संत बन गया। एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर अ फ्यूचर। अगर कोई इस समय बहुत पापी है, बहुत उसने पाप किए हैं, लेकिन वो बदल सकता है, ऐसी बातें नहीं है कि नहीं बदल सकता है। इसीलिए भारत के अंदर हम ये देखते हैं कि समझो किसने किसका खून किया, अब जीवन किसका लिया, तो उसके बदले में उसका जीवन भी जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी का जीवन लेने का, तो उसको फांसी मिलनी चाहिए या तो उम्र कैद मिलनी चाहिए। तो इस पर भी कितना बड़ा मानो एक आर्ग्यूमेंट है कि फांसी होनी चाहिए या नहीं, ये सजा होनी चाहिए या नहीं, या उम्र कैद ही सजा हो, क्योंकि हो सकता है कि अगर फांसी देंगे तो जीवन खत्म, परंतु अगर उम्र कैद भी देंगे तो वो व्यक्ति जेल में होते होते वो बदल भी सकता है, और जब बदल जाता है तो उसकी सजा कम भी हो जाती है। बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, जेल में उनको उम्र कैद मिली हुई है क्योंकि हत्या की है, लेकिन जेल में रहने के बाद इतना बदल जाते हैं, जो उनकी सजा उम्र कैद से घट करके 10-15 साल ही हो जाती है क्योंकि बदल गए। इसीलिए कहा जाता है एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर अ फ्यूचर। चाहे कितना भी पापी है लेकिन उसका भी भविष्य हो सकता है। तो ये सारी कर्मों की गति के अंतर्गत भी आता है। कई ऐसे कर्म हैं हमें लगेगा ये तो बहुत बुरी चीज है, लेकिन स्थान समय परिस्थिति के अनुसार वो कर्म का स्वरूप भी बदल जाता है और फल भी बदल जाता है। वैसे किसी की हत्या करना पाप है, लेकिन एक सरहद पर, बॉर्डर पर आर्मी वाला, मिलिट्री वाला, उसके हाथ में बंदूक है, दुश्मनों पर उसका पूरा नजर है, और मान लो कोई ऐसा दुश्मन आता है, आतंकवादी आता है और उसको मार गिराता है, उसको तो इनाम मिलता है, उसको तो प्रेसिडेंट के द्वारा परम वीर चक्र न जाने कितने प्रकार के उनको अवार्ड मिलते हैं। अब उसने कर्म तो हत्या करने का ही किया था, लेकिन देश की रक्षा के खातिर जो 125 करोड़ आबादी भारत की, उसकी रक्षा का सवाल था, और उस रक्षा के खातिर अगर उसने एक आतंकवादी की हत्या की तो उसको कोई फांसी थोड़ी मिलेगी, उस आर्मी वाले को, उसको तो अवार्ड मिलेगा, क्योंकि स्थान परिस्थिति इनके कारण वो कर्म का फल बदल जाता है। अब ये भी कर्म की गति है। इसीलिए वर्तमान का संबंध भूत से है और भविष्य का संबंध वर्तमान से है। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि हमारे विचार ही भाग्य हमारा निर्धारित करते हैं। एज यू थिंक सो यू शैल बिकम। आपकी सोच कैसी है, कर्म का भी आधार हमारी सोच है। इसीलिए जैसा सोचेंगे वैसी हमारी वृत्ति बनती है। वो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वृत्त वो सर्किल बनते जाते। जैसे हम पानी में पत्थर डालते हैं तो वो घेराव हो जाता है, वो सर्किल वो व्रत कहलाते हैं। तो वैसी हमारी वृत्ति बनेगी, उनसे हमारा वातावरण तैयार होगा। आप किसी स्थान पर जाएंगे जहां पर कहते हैं यहाँ तो बहुत भारी एटमॉस्फेयर है, बहुत भारी है, और कहां जाएंगे कहेंगे यहाँ तो कितना हल्का है, ये या कितना सब हल्का वातावरण। क्यों? क्योंकि वहां जो रहने वाले हैं उनके विचार कितने ऊंचे। और किसी घर में जाएंगे, किसी स्थान पर जाएंगे जहाँ सब गुस्से वाले हैं, क्रोधी, ईर्ष्यालु, न जाने क्या क्या विकृतियों वाले हैं, तो उसके घर का वातावरण ही इतना भारी होता है, सोचेंगे जल्दी निकले इस घर से। तो हमारे विचार ही हमारी वृत्ति बनाते हैं, और वही वृत्ति से हमारी भावनाएं बनती है, वही भावना हमारी वाणी को जन्म देंगे। भले कोई कितना भी कुछ कह दे कि भले मैंने बोल दिया पर मेरी भावना ऐसी नहीं थी, ये हो ही नहीं सकता है। बिना भावना के ऐसे ही वाणी नहीं निकलती है। अगर भावना अच्छी है तो बुरे बोल निकलेंगे ही नहीं, भले कितना भी कोई बहाना दे दे मेरी भावना ऐसी नहीं थी, पर मन में आया, वृत्ति में आया, भावना में आया, तभी तो वाणी में आया, नहीं तो वाणी में कैसे आता। और जब कोई वाणी में आता है तो कर्म में भी एक दिन आएगा। कर्म में आया तो एक दिन आदत भी बन जाएगी। कोई न कहे कि नहीं नहीं मेरी आदत थोड़ी बनेगी, एक बार किसी संग में आके सिगरेट पी लिया, कहेगा नहीं नहीं एक ही बार पिया ना हमने, हम कोई बार बार थोड़ी पीते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको एक ही बार पीता हुआ देख लिया, वो क्या कहेगा, ये तो सिगरेट पीता है हा? क्योंकि उस आपने आपको उसने देख लिया पीते, भले आपने एक ही बार पिया, और एक बार पिया तो दोबारा पीने में आपको कोई हर्ज नहीं होगा, पी तो लिया है ना, अनुभव तो कर लिया है। तो अगर आपको आदत नहीं बनानी है तो एक बार भी क्यों पीना, क्योंकि कर्म जो बार बार करते वो आदतें बन जाएंगी। और आदत जो हमारे अंदर है, कहा जाता है आदत बुरी बला है, वो बुरी बला होकर के वो आपको चिपक जाएगी और आपका वही व्यक्तित्व बन जाएगा। व्यक्तित्व केवल कपड़ों से नहीं बनता है, व्यक्तित्व आपकी अंतर की सोच से बनता है, और वही व्यक्तित्व आपका भाग्य निर्धारित करेगा। तो कैसा भाग्य हम चाहते हैं हमारी सोच पर निर्भर करेगा। अगर हम भाग्य ऊंचा चाहते हैं तो हमारी सोच भी कितनी ऊंची होनी चाहिए, ये हम जरूर ध्यान दें। इसीलिए बहुत सुंदर कहावत है कि अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि एक दिन वो आपके शब्द बन जाएंगे। जो शब्द आप नहीं बोलना चाहते हो तो सोचो भी नहीं, जो बोल आप बोलेंगे फिर वो कर्म में भी आएंगे। जो कर्म आपको नहीं करने हैं तो बोलो भी नहीं, और जो आप करेंगे वो आदत बन जाएंगी। तो जो आदत आप नहीं चाहते हो वो करो भी नहीं। जैसा व्यक्तित्व आप चाहते हो वैसा ही करो, क्योंकि वही कर्म आपका व्यक्तित्व बनाएगा, आपकी आदतें बनाएगा, और वही व्यक्तित्व आपका भाग्य निर्धारित करेगा। तो कैसा भाग्य आप चाहते हैं वो आपके हाथ में है। तो अपने कर्मों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ये कभी न कहीं हाय मेरा भाग्य, मेरा क्या नसीब है, मैंने आखिर क्या किया जो ऐसा मुझे नसीब मिला। ये कभी भी भाग्य को दोष न दें, उस भाग्य को बनाने वाले हम खुद ही हैं। ये भी न कहें कि भगवान ने मेरा ऐसा कैसा भाग्य बनाया। भगवान तो सबका पिता है। आपको अगर कहा जाए कि आप अपने बच्चों का भाग्य लिखें तो कभी बुरा थोड़ी लिखेंगे, अच्छा ही भाग्य लिखेंगे। आपके माता पिता कभी नहीं ये सोचे होंगे, सोचा होगा उन्होंने कि मेरे बच्चों का भाग्य बुरा हो। अगर उनको कहा जाता आपका भाग्य लिखे तो कभी बुरा नहीं लिखा होगा, पर आपके अपने ही कर्मों से ही वो भाग्य बना है, इसलिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो कर्म का फल भोगने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, हम दूसरे पर दोष न धरें। अब कई इसमें सोचते कि ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है, ये कर्म कर्म कर्म, हमको तो कर्म करना ही नहीं है, बस कर्म ही छोड़ देना है, कर्म सन्यासी बन जाना है। वे वास्तव में कर्म सन्यास कभी होता ही नहीं है, कर्म ही तो हमारी सच्ची पूंजी है, कर्म ही तो हम पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं। बच्चा जन्म लेता है कहते भाग्य लेकर आया, तो भाग्य लाना माना जो उसने कर्म किए हैं वो कर्म का भाग्य लेकर के आया है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि वो ही हमारी सच्ची पूंजी है। तो अगर कर्म ही हमारी पूंजी है तो हमको अपने कर्मों पर कितना ध्यान देना होगा, क्योंकि वो ही हमारे साथ चलेगा। आत्मा का ये शरीर भी साथ नहीं चलेगा आत्मा के साथ। और पूंजी तो छोड़ो, और बातें तो छोड़ो, संसार की प्रकृति की, शरीर भी साथ नहीं चलेगा। जिस शरीर के लिए आत्मा इतनी मेहनत करती है, अपने लिए शरीर के लिए सब कुछ, और वो भी धोखा दे देगा, क्योंकि वो तो प्रकृति की चीज है। तो मुझ आत्मा को क्या करना होगा, अपने कर्मों पर कितना ध्यान देना होगा। तो कोई सोचे मैं कर्म तो करूं लेकिन वो फल न मिले, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए कर्म के फल से कोई बच भी नहीं सकता है, इसीलिए कर्म ही नहीं करना ये भी नहीं सोचना है, और कर्म किया तो मैं बच जाऊं फल से ये भी नहीं होगा, वो आपका पीछा करेगा। इसीलिए कर्म करने से पहले 10 बार सोचो, मैं क्या करने जा रहा हूं। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो, बिना सोचे समझे कभी नहीं करो। सोचने से पहले ही सोचो क्या साथ जाएगा। हाँ, बहुत ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, सोचने से पहले ये सोचो क्या साथ जाएगा। तो क्या हम सोचें, कर्म तो थर्ड स्टेज है, पहले सोचो फिर समझो इसका परिणाम क्या निकल सकता है। ये नहीं कि हम बिना सोचे समझे कर्म कर लें, फिर समझ में आए कि ये तो गलत किया, फिर सोचने लग जाए अभी क्या करें, ये उल्टी गाड़ी नहीं चलनी है। इसीलिए किसी ने इंग्लिश में बहुत सुंदर कहा, थिंक बिफोर यू थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक। क्या सोचने वाले वो उसके लिए भी सोचो कि क्या मैं सोचने जा रहा हूं, इतना सोच पर अपना ध्यान देना होगा। तो कर्म से हमें शिक्षा लेनी है, कर्म से डरना नहीं है, क्योंकि अगर हमने सही कर्म किया है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चा व्यक्ति आखिर उसकी जीत होनी है, ये हो नहीं सकता कि झूठ की विजय हो, सत्य की ही विजय है, सत्यमेव जयते, ये भारत की संस्कृति है। तो जब इसको हम समझते हैं तो हम अगर सच्चे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए भय नहीं करना है, कर्म से भय नहीं होना चाहिए। हाय मैंने ये गलती की है, अगर गलती की है तो तैयार हो जाओ, उसकी सजा भी मिलेगी, उससे भी घबराओ मत। तो हम कर्म से शिक्षा लें, क्या शिक्षा लें, भय के बदले शिक्षा लें, उसे प्रेम करें। तो भय कैसे होता है, हाय मैंने ये किया है पता नहीं क्या फल मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, मिलेगा तो जरूर। पर हम कर्म से कैसे प्रेम करें, अगर गलत कर भी लिया तो अपने आप को समझाएं कि मैंने किया है मुझे फल तो मिलेगा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बदल लूँ। तो ये है कर्म से प्रेम करना, कि खुद को बदल लेना, क्योंकि वो कर्म का फल आपका पीछा करेगा जब तक आप बदल नहीं जाते हो, ये भी है पीछा करेगा। इसलिए क्यों न पहले से ही बदल ले, अपने आप को बदल दे। तो जब ये हम अपने अंदर धारणा रखते हैं तो हम दूसरों की चिंता नहीं करते। हम ये नहीं कहते इसने भी तो किया, इसने ही क्यों किया, वो जाने उसका कर्म जाने। तो दूसरे आपसे कैसा व्यवहार करते हैं ये उनका कर्म है। किसने मुझे दो गाली दी, चलो कर्म उसने किया, और फिर मैंने चार दे दी तो आप कहेंगे उसने मुझे दो गाली क्यों दी, मैंने इसीलिए चार दी। अब उसने दो गाली दी, अपना मुंह खराब किया, आप क्यों चार गाली दे रहे हो? और अगर आपने चार गाली दी इसका मतलब वो जो दो गाली उसने दी वो दो गाली आपने स्वीकार की, तभी तो चार दी। अगर वो दो स्वीकार ही नहीं करते तो चार देने की जरूरत ही नहीं है, है क्या? मान लो किसी ने मुझे कहा तुम मूर्ख हो, छोटा सा मिसाल, तो मूर्ख हो, तो मूर्ख हो। अब मुझे गुस्सा आया, तुम मुझे मूर्ख कहते हो, अच्छा मैं दिखाता हूँ, तुम महामूर्ख हो, नहले पर दहला, तुमने नहला फेंका, मैंने दहला फेंका, आपके आपको जीता मैंने, आपको चार गाली दी। अच्छा मैंने चार दी, वो आठ देगा, वो अपना मुंह क्यों बंद करेगा? भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर एक किसके लिए क्या क्या बोलता रहता है, किसका मुंह आप बंद करेंगे? किसी का भी मुंह नहीं बंद कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब तक आपने कर्म में नहीं लाया फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चलो उसमें भी कोई ऐसे बोलता है तो उसके ऊपर मान हानि का केस कर सकते हैं, अभी केस लड़ते रहो। परंतु मान लीजिए मैंने चार का, उसने आठ का, मैंने सोलह का, उसने बत्तीस का, परिणाम क्या होगा? और बात अगर पूछो कोई बीच में पड़े कि आखिर बात क्या थी, बात तो कुछ भी नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। ऐसी हालत कई बार होती है हमारे दुनिया में, जितने भी झगड़े होते हैं ना, घरों में भी झगड़े होते हैं या झगड़े जितने होते हैं आपसी झगड़े, उनका 50% जो कारण होता है ना, हमारे शब्द, हमारे शब्द, तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने भी तो कहा, बस झगड़ा चालू हो गया, बात तो कुछ भी नहीं होती है। चलो किसी ने मुझे कुछ कहा, मैं समझ जाऊं ना कि चलो मेरी ये कमी हो सकती है, इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा निंदक नेरे राखिए, निंदक को सदा अपने साथ रखो। आपका जो क्रिटिक है वो आपका वेलविशर है, वो आप चाहता है कि आप अच्छे बनो। अब ये आपको कल बताया गया, तो क्या सचमुच हम ऐसे कर सकते हैं कि उसने मेरी ग्लानी की और मैंने उसको समझ लिया कि हाँ बरोबर मेरी गलती है, मैं बदल जाता हूँ, खत्म हो गई बात। कोई महिमा मेरी करता है तो खुल जाते हैं, जैसे बलून होता है, हवा भर दी तो बड़ा सुंदर दिखेगा, पर जरा सी सुई लगाई तो हवा निकल गई, उसकी सुंदरता खत्म। तो किसी ने महिमा की तो हम फूल गए और ग्लानी की तो मुरझा गए। अगर ये हमारी स्थिति होगी तो हम कभी भी समाज में सिर ऊंचा करके नहीं चल सकेंगे, भले दो चार दिन चलेंगे पर फिर हमारी गलतियां ढेर निकलेगी, क्योंकि कोई भी परिपूर्ण तो है नहीं। इसीलिए आप उनसे कैसा व्यवहार करते हैं ये आपका कर्म बन जाता है। तो कर्म की गहन गति की समझ क्या है, हमें अपने जीवन की जिम्मेवारी लेने की शक्ति प्रदान करता है। और हम दूसरों को दोष देने की बजाय हर परिस्थिति का सामना सहज कर सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे ठीक है मैं माफी मांग लूंगा, चलो बात खत्म। दादी जी हमारी हमेशा यही कहती थी, हार मनी, ये इंग्लिश शब्द है हार मनी, समरसता, लेकिन अगर इसको तोड़े शब्द हार मानी, हार मानी झगड़ा टूटा, बात खत्म, हार मान ली झगड़ा टूट गया, बात खत्म। एक ने कहा दूसरे ने माना, दोनों ज्ञानी आत्मज्ञानी हो गए। ये कितनी ऊंची धारणा है हम सबकी, लेकिन मनुष्य को अपमान लगता है, क्यों? क्योंकि अभिमान है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान महसूस होता है, पर जहाँ स्वाभिमान है, आत्मा का स्वमान है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और दूसरा मुझे कुछ भी कह रहा है, पर मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं वही उनको दूँ जो मेरे पास है। अब इसको हम कहते हैं कर्म की गति को समझना। तो कर्म का संन्यास भी नहीं करना है, दुनिया छोड़ के कहाँ जाएंगे, जंगल अभी बचे ही कहाँ जहाँ जा करके आप तपस्या करेंगे, घर में ही रहना है, घर गृहस्थ में ही रहना है, लेकिन कमल फूल समान रहना है। इसीलिए कर्म का संन्यास नहीं करना, सिर्फ कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे कर्मों को श्रेष्ठ? चार प्रकार की वृत्तियां हैं, इन चारों प्रकार की वृत्तियों को समझना है, क्योंकि उसी अनुसार कर्म होंगे हमारे। एक वृत्ति है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ये दानवी वृत्ति है। अपनी चीज तो नहीं देगा, लेकिन दूसरे की चीज पर भी दृष्टि जाएगी, इनका कैसे मैं लूं, ये दानवी वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, तेरा सो मेरा, मेरे हाथ न लगा। आज परिवारों में हम ये देखते हैं, भाई भाई के बीच में इतने झगड़े क्यों होते हैं? अपना तो हिस्सा मिला, लेकिन मेरे भाई को क्यों मिला, वो भी मुझे मिलना चाहिए। तो मेरा तेरा भी मेरा, ये दानवी वृत्ति ये पाप आत्मा बनाती है। फिर दूसरी है मानवी वृत्ति। चलो बाप ने अब दोनों बेटों को बांट के दिया और बीच में दीवार खड़ी कर दी, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा। अब आपस में नाराज हो गए कि इनको ये मिला, मुझे ये क्यों मिला, मुझे वो चाहिए था आदि आदि। पर दीवार खड़ी हो गई, तुम अपने घर सुखी, मेरे घर मत आना, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, पार्टीशन पैदा हो गई। भाई भाई या एक दो के चलो भले दुश्मन न बने, लेकिन मित्र भी नहीं बने। तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, मैं अपना नहीं दूंगा, तुम्हारा मुझे नहीं चाहिए, ये भी कहां प्यार है, ये तो साधारण इंसान की स्थिति है। लेकिन दैवी वृत्ति क्या होगी? दैवी वृत्ति है मेरा और तेरा क्या, ये हम सब का प्यार प्रेम से चलो, मैं क्या लाया दुनिया में, आप क्या लाए, हाँ ये सब यहीं रह जाना है, इसीलिए प्यार प्रेम से चलो। ये दैवी वृत्ति, ये देवता दाता का स्वरूप, बड़ा दिल। और उनसे भी ऊंची वृत्ति है योगी की वृत्ति। तेरा मेरा तो छोड़ो, मेरा और तेरा कुछ भी नहीं, ये सब भगवान का है, ईश्वर का है, ये बहुत ऊंची धारणा है। कई लोग हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग इतनी बहने यहाँ रहती हो, कभी आपस में लड़ती नहीं हो क्या, आपस में लड़ती नहीं हो, ऐसे प्रश्न करते हैं। तो हम कहते हैं देखो, अगर लड़ाई होती भी है ना, कुछ झगड़ा होता है मान लो, उसका मूल कारण ही होता है तेरा मेरा, सच पूछो तो। लेकिन भगवान ने हमको ऐसी शिक्षा दी है कि मेरा कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ये मन धन तन धन सब उसका है। तो जब मेरा नहीं है तो फिर मेरा कहाँ से आया जो झगड़ा हो, पहली बात तो ये। दूसरा है कि पहले मुझे बदलना है, ये हर एक के अंदर कूट कूट के भरा जाता है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, जो ओटे सो अर्जुन ऐसे कहा जाता है। तो मुझे बदलना है, मुझे पहले अपना परिवर्तन करना, जब ये संकल्प मन में आता है तो चलो झगड़ा होगा क्यों। और तीसरा कारण ये भी है जो झगड़ा न हो उसके लिए है कि ये जो भी कार्य यहाँ हो रहा है ये सब ईश्वर का कार्य है, और हर कार्य एक महान कार्य है, चाहे कोई भाषण करे या बर्तन मांजे, वो भी ईश्वर का ही कार्य है। आप देखेंगे गुरुद्वारों में जाते हैं, बड़े बड़े लोग, कितने धनवान लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन गुरुद्वारों में जा करके पानी देते हैं, ग्लास में पानी भर के सबको देते हैं। हाँ, अब ये भी बहुत बड़ी सेवा समझते हैं, कार सेवा करते हैं, सरोवर की सेवा करते हैं, ये सेवा क्यों करते हैं? घर में तो अपना पानी का ग्लास भी खुद नहीं भर के पियेंगे, नौकर होते हैं, और गुरुद्वारों में जा करके इतनी सेवा करते हैं। समझते हैं ये ईश्वर की सेवा है, ये सतगुरु की सेवा है। मंदिरों में जाके कितनी सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान का कार्य है। कोई नीच नहीं हो जाता है अगर कुछ सफाई भी की या कुछ हमने झाड़ू पोछा भी किया, क्या बड़ी बात है। भगवान का कार्य है तो बहुत ईश्वर हमें फायदा देता है, क्योंकि ईश्वर का कार्य है। तो इसीलिए यहाँ हर कार्य एक महान कार्य है, क्योंकि ईश्वर का कार्य है। तो जब ये समझते तो झगड़ा क्यों होगा, न तू तू मैं न तेरा मेरा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए जब ये वृत्ति बन जाती है उससे हमारे कर्म भी बदल जाते हैं। तो चार प्रकार के कर्म हैं, एक है पाप कर्म, दूसरा है पुण्य कर्म, तीसरा है श्रेष्ठ कर्म और चौथा है अकर्म। हम द्वापर कलयुग में केवल पाप और पुण्य कर्म को जानते हैं, पर श्रेष्ठ कर्म और अकर्म इनको भी समझना होगा। पाप की परिभाषा क्या है, पुण्य की परिभाषा क्या है, श्रेष्ठ कर्मों की क्या परिभाषा, अकर्म क्या है, हम थोड़ा उसको देखेंगे। कोई भी कर्म अगर देह अभिमान के वश होता है, मैं और मेरा इसके आधार पर होता है, वो पाप के खाते में जाता है, क्योंकि नकारात्मक विचारों के वश होकर के वो कर्म होता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल अभिमान है, और ये अभिमान वश जब हम मैं कहते हैं तो ये पाप का पहला दरवाजा है। फिर मोह वश मेरा कहते हैं, ये पाप का दूसरा दरवाजा है। तो अभिमान, मोह, लोभ, क्रोध, काम वासना, ये काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सारी जो विकृतियां हैं ये सब पाप के द्वार हैं। और जितना जितना ये जो वृत्तियां आसुरी वृत्तियां हैं इनके आधार पर हमारे कर्म होते हैं, उतना पाप का खाता बढ़ता जाता है। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं, तन के रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी। धन भी सुख नहीं दे रहा है, भले धन कितना भी है। संबंधों में अनबन, ये सब कर्मों का ही परिणाम है, पाप कर्मों का परिणाम। तो कई लोग जो कुछ गलत कर्म करते हैं तो समझते थोड़ा मैं पुण्य कर दूं तो मेरा पाप कम हो जाएगा। तो पुण्य कर्म करते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, रक्तदान, धनदान, दान करते हैं। चलो कोई संस्थाओं में दान करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन दान का महत्व भी समझना होगा कि पात्र योग्य हो तब दान करें। और दूसरा, दान करने समय ये अभिमान न आए कि मैंने दान किया। इसीलिए बहुत सुंदर कहावतें हैं, नेकी कर दरिया में डाल। दाया हाथ आपका दान करे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दाई ने दान किया। इतना गुप्त दान का महत्व है। अगर गुप्त दान होगा तो पुण्य बहुत बनता है। इसीलिए कहा कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्। कर्म अच्छे करो लेकिन फल की चिंता मत करो, फल ईश्वर को छोड़ दो, नेकी कर दरिया में डाल। ये कहावतें कोई ऐसे ही नहीं बनी है। तो इसीलिए कोई भी कर्म देह अभिमान के वश है, विकारों के वश है, वो पाप के खाते में जाएगा। और उसका हम क्यों नहीं भोगेंगे, जरूर भोगेंगे। तो कोई कहे कि मैं तो करता नहीं पाप, सारा दिन मैं मेरा यही लगा रहेगा तो पाप तो होता ही है ना। फिर पुण्य कर्म माना जरूरतमंदों को स्थूल रूप से मदद करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई बहुत धन दान करते हैं तो उसका रिटर्न भी उनको मिलता है। अगले जन्म में वो धनवान के घर में जन्म लेगा, जन्मा बच्चा पैदा हुआ है करोड़पति बाप के घर में, और पिता ने उस बच्चे के जन्म पर नामकरण हुआ और नाम मिलते ही बच्चे के नाम पर 1,00,000 रुपया बैंक में जमा करा दिया, तो बच्चा जन्म से लखपति बन गया। कैसे बना लखपति, क्या उसने कर्म किए जो जन्म से लखपति बन गया? बस पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा, इसलिए वो पुण्य उस आत्मा के साथ गया और एक धनवान के घर में जन्म लिया। कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलता है, अवश्य उसका भी उनको पुण्य मिलता है, जो मरीज उसमें शफा लेते हैं, तो जिसने दान किया धन उसको उसका रिटर्न मिलता है, हेल्थ अच्छी होगी उसकी। किसने धर्मशालाएं बनाई उसका रिटर्न उसको मिलेगा, क्यों नहीं ऐसे पिता के घर जन्म लेगा जिसके पास बहुत जमीने हैं, क्योंकि उसने धर्मशालाएं बनाई। किसने स्कूल बंधवाए उसका भी पुण्य मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि स्कूल बनवाया उसमें कितने बच्चे आके पढ़े होंगे और उसका पुण्य उस आत्मा को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है हमेशा सबकी दुआएं लो, ऐसे कर्म करो जो आपको दुआ मिले, कोई ऐसा कर्म नहीं करो जो बद्दुआ मिले, क्योंकि दुआएं ही हमारे साथ जाएगी, बद्दुआएं भी जाएगी, दोनों ही जाएगी, बाकी कुछ नहीं जाएगा। तो दुआएं कैसे हम कमाएं, सबको सुख दें, बद्दुआएं कैसे लेते हैं जब किसी को दुख देते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसी कहावतें लिखी होती है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, किसने बुरी नजर रखी तो उसको श्राप मिल गया, उसको बद्दुआ मिल गई, तेरा मुंह काला। तो बुरी नजर रखते ही उसको बद्दुआ मिली, आंखें तो वही है लेकिन वो बुरी नजर माना उसकी वृत्ति बुरी थी, आंखें कोई आंखें तो आंखें होती है पर बुरी वृत्ति से देखा तो उसको बद्दुआ मिली। और वही आंखें किसी संत महात्मा गुरु की है और उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, उसने मुझे केवल देखा तो कितनी खुशी होती है, हम कहेंगे गुरु जी की मुझ पर दृष्टि पड़ी, मैं निहाल हो गया। तो किसकी दृष्टि से निहाल हो जाते हैं और किसकी दृष्टि से उसको बद्दुआ देते हैं, है तो एक ही, ये आंखें ही ना, लेकिन अंतर क्या हुआ, वृत्ति का। तो इसीलिए पुण्य कर्म कमाओ, दुआएं कमाओ, ये दुआएं ही आपको मदद करेगी, साथ आप ले जाएंगे। अब श्रेष्ठ कर्म क्या है, ये परमात्मा हमको इस समय संगम युग पर सिखाते हैं। जो भी कर्म हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करते हैं, परमात्मा की याद में करते हैं, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाता है, जिससे हम भले तन से सेवा करते हैं, मन से, धन से, समय से, अपने कलाओं से, जो भी हम यहाँ देखेंगे सेवाएं कितनी हो रही है, ये सब श्रेष्ठ कर्म के खाते में जाता है, क्योंकि ईश्वर का कार्य कर रहे हैं और इन श्रेष्ठ कर्मों का फल बहुत ऊंचा है। हमको ये फल अभी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं मैंने 1-2 घंटा 1.5 घंटा भाषण किया तो हर एक मेरे को 100 रुपया दो, ये हमको रिटर्न नहीं चाहिए। अगर आप मुझे देंगे भी ना, हम लेंगे नहीं लेंगे, हम कहेंगे बाबा की भंडारी में डालो, हमको नहीं चाहिए, हम भी तो बाबा के घर का ही खाते हैं, वो हमें खिलाता है, वो ही हमें खिलाता है। आप भी उनको दो तो आपका भाग्य बनेगा, आपसी लेन देन नहीं चाहिए, ये नहीं मैंने भाषण किया तो 100 रुपया आपने दिया ना, या मैंने उसके लिए चेक ले लिया, भाई मैंने भाषण किया गवर्नमेंट में या कंपनीज में, ऐसे होता है भाषण करने गए तो हमको चेक मिल जाता है कि आपने इतना भाषण किया, रिटर्न तो उसी समय मिल गया। लेकिन हम कहते हैं परमात्मा इस समय हमसे वो श्रेष्ठ कर्म कराते हैं जिससे हमारा भाग्य इतना ऊंचा बनता है, इतना ऊंचा बनता है जो हम 2 युग तक इनका भाग्य खाते रहेंगे, ये हमें इतना ऊंचा भाग्य दिला रहा है। हम मानव से देव बन जाएंगे, नर नारायण बन जाएगा, नारी लक्ष्मी बन जाएगी, इतनी। तो इसीलिए हम ऐसे कर्म अपने जीवन में करें तो श्रेष्ठ कर्मों को हम जीवन में लाएं ताकि हमारा इतना ऊंचा फल भी मिले। तो इसलिए अभी फल नहीं खाना है, अभी कच्चा फल नहीं खाना है। आपसे कोई धन लेने के लिए हम आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमने जीवन में पाया वो हम बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान की ये सेवा है इसलिए करते हैं। जब ये हमारी ऊंची धारणा बन जाती है तो फल कितना ऊंचा होगा। लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार है चरित्र रूपी धरनी हो, इसका आधार है श्रेष्ठ कर्मों का बीज हो, संयम नियम रूपी खाद हो, अच्छे संस्कार रूपी वातावरण हो, ये सब जरूरत है। और फिर जो हम फल खाते हैं, आप भी खाइए हमारे साथ, सब मिल करके खाएंगे और मानव देव बन जाएगा, ये संसार बदल कर स्वर्ग बन जाएगा, यही परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का समय, जिस समय हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करके और मानव से देव बनते हैं। कई समझते हैं कि अगर हमने पाप कर्म किए हैं तो हम अनेक योनियों में भटकेंगे। परमात्मा कहते हैं नहीं, ये जो अन्य योनियां हैं 84 लाख योनियां, ये सब प्रकृति की शोभा है, ये सब प्रकृति की चीजें। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है और मैक्सिमम जो मनुष्य आत्मा जन्म लेती है वो 84 जन्म लेती है, ये 84 का चक्र है। कोई भी मनुष्य आत्मा और योनियों में नहीं जाती, कई समझते वो भोग योनि है, हम कहते हैं वो भोग योनि नहीं है, वो कर्म योनि भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि तो मनुष्य के अंदर है। भले कई ऐसे जानवर होते हैं लगता है बहुत बहुत बुद्धिमान है, लेकिन ये उनके इंस्टिंक्ट्स है, ऐसे नहीं कि कोई बुद्धि है, वो दिमाग उस प्रकार का है जैसे मनुष्य का होता है। इसीलिए मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोला ही मिलता है और उसी चोले में ही भोगना है। अगर और योनियां भोग योनि होती तो मनुष्य योनि में तो भोगना ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए कर्म योनि भोग योनि ये मनुष्य जन्म के रूप में, जैसा बीज वैसा फल। अब इनको जब हम समझते हैं तो महसूस होता है कि हम 84 जन्म लेकर के अब अंत में आके पहुंचे, जबकि परमात्मा हम सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं, घर ले जाने के लिए आए हैं, फिर नई दुनिया सतयुगी दुनिया में भेजेंगे। इसलिए सतयुगी दुनिया में हमारे कर्म कौन से होंगे? वो अकर्म होंगे। तो अकर्म किसको कहते हैं? जो कर्म जिनका अलग कोई फल नहीं बनता, लेकिन वे कर्म ही फल के रूप में होते हैं, वे कर्म ही फल के रूप में होते हैं, इसीलिए वो फल हम 2 युगों में खाएंगे। इसलिए अंत में हम यही कहेंगे कि हमारे सिर पर जो अनेक जन्मों का पापों का बोझा है वो अभी सिर से उतारना है। कैसे उतारेंगे? अगर अभी नहीं उतारेंगे तो धर्मराजपुरी की सजा मिलेगी, धर्मराज की सजाएं खाएंगे। उसकी बजाय हम अभी ही खत्म करें। और कैसे करेंगे खत्म? जितना जितना हम परमात्मा को याद करते जाएंगे, इस राजयोग का अभ्यास करते जाएंगे, हम अपने पापों को नाश करते जाएंगे। और दूसरा, और आगे पाप कर्म मत करो, किसी विकार के वशीभूत कोई पाप नहीं करो तो आगे पाप कर्म नहीं होंगे। और सत्कर्म ही करते जाओ तो जो पाप कर्म किए हुए उनका भी उनकी भी सजा कम होती जाएगी होती जाएगी। और हम आत्माएं इतनी श्रेष्ठ बन जाएंगी जो धर्मराज भी हमको सलूट करे, सजा न दे, ये हम चाहते हैं। आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि नहीं? या सजाएं खाना पसंद है? क्योंकि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अभी यहाँ समाप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।